జయ గురుదేవం జయ గురుదే ఓం అశరణ శరణ శరణ ప్రభులే कहीं जो को पविधाता
गीता के अनुसार धर्म साफ सुथरा पूरा का पूरा गीता एक धर्ममय अमृत थे। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं प्रयुपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिय है। इस धर्ममय अमृत को श्रद्धा और समर्पण के साथ मेरे आश्रित होके जो यथोक्तम यथावत जैसे जैसे अभ्यास करने के लिए साधना करने के लिए विधि बताई गई है उस विधि के अनुसार जो बजता है वो पुरुष मुझे भक्तों में भी अति उत्तम भक्त मानने हैं। गीता धर्म में एक अमृत है, मृत्यु संसार अमृत आत्मा उसको दिलाने वाला है। और धर्म है क्या? मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशेषि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि मे। अर्जुन मुझ में मन को लगा मेरा अनन्य भक्त हो मुझे नमस्कार कर मैं सत्य कहता हूं कि तुम मुझे प्राप्त होगा। सारे धर्म जो भी रट रखा है तुमने उटांग पटांग जो संग्रह कर रखा है मस्तिष्क में उनको त्याग दे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। सारे धर्मों की चिंता छोड़ एकमात्र मेरी शरण हो जा, मैं तुम्हें समस्त संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरे अमृतमय स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, सदा रहने वाला जीवन और सदा रहने वाला धाम। तो एक परमात्मा के चिंतन की नियत विधि का आचरण धर्माचरण, इसी का अनुवाद संसार के हर महापुरुष ने किया है, आपके पूज्य गोस्वामी जी ने यही किया है कि आखिर धार्मिक है कौन संसार में। तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता धर्म परायण सोई कुलताता राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ अर्थात धर्म का मर्मज्ञ विशेषज्ञ है, गुणी है ज्ञाता है, वो पंडित है, वो दान दाता है, उसके पास देने लायक सामग्री है कौन कि राम चरण जाकर मन राता। एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है वो धार्मिक है। नीति निपुण सोई परम सयाना श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना दक्ष सकल लक्षण युत सोई जाके पद सरोजरति हुई। वो नीति में निपुण परम सयाना वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना, भले वो अंगूठा छाप अनपढ़ क्यों नहीं हो। कबीर की तरह हमारे गुरु महाराज भी पढ़े लिखे नहीं थे, तीन ही दिन स्कूल गए थे, लेकिन जब वाणी निकलती तो तब विद्वानों की विद्या का कोई उपयोग नहीं था। महाराज कहे हो हम कहीं आंखी की देखी तुम कहो कागज की लेखी, तुम कागज की लिखा पढ़ा बुद्धि के स्तर पर कहता मैं देख के कहता हूं। बोला तुम्हारा हमारा मन एक कैसे होगा। वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना, वो क्रिया में दक्ष है। कौन? कि राम चरण जाकर मन रहता, राम एक प्रभु के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। मानस के रचयिता भगवान शिव, फिर उन्हीं के द्वारा लोमस को मिली, कागभूषण को मिली, याज्ञवल्क्य और सबको मिली। आदि रचयिता और सब तो उनके द्वारा प्राप्त करने वाले महापुरुष हैं। रचि महेश निज मानस रखा, जिनके हृदय की उपज मानस, जिन्होंने प्रत्यक्ष प्रभु का विग्रह देखा और प्रस्तुत किया, उन भोलेनाथ शिव ने कहा पार्वती इन संसार में धार्मिक कौन है। तो शोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। वो कुल ही कृतार्थ है जिस कुल में किसी एक राम उन परम प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा हो गया हो। बस इतना ही धर्म। वनवास का प्रथम दिवस भगवान राम और सीता माता घास की सैया पर शयन कर रहे थे और लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। केवट भी अपने कार्यकलापों से निवृत्त हुआ और धनु ही लेके बैठ गया। पहरे में जब उनको घास पर लेटे देखा तो भगत का हृदय भक्ति भाव से, विरह से, वेदना से दर्वित हो गया। बोले भैया लक्ष्मण, माता के कई दुर्बुद्धि, कुटिल, हतभाग्य, अपने ही फलते फूलते वंश वृक्ष पर कुठाराघात किया है। जब ये विभूतियां घास पर लेटी हैं तो उत्तम सैया और पर्यंक और विधाता ने बनाया ही क्यों? के कई दुष्ट है, दुर्बुद्धि है। लक्ष्मण ने कहा भैया, माता के कई का तो कोई दोष नहीं है। तो नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में किसी को दुखी कर दे, सुखी कर दे, कोई जन्मा ही नहीं आज तक। अपने कृत कर्मों का भोग ही घूम फिर के सामने आता है। केकई उसमें केवल निमित्त थे, लेकिन ये जो राम और हम वन में भटक रहे ना, ये हमारे कमाई है किसी जन्म की। और श्राप था नारद जी का, उसको साकार करना ही था राम जी को। और कोई बहाना ही नहीं बनी तो निकलेंगे कैसे घर से? वो तो निमित्त है। माता का कोई दोष नहीं, किसी को सुखी करे दुखी करे कोई जन्मा ही नहीं। फिर संसार में है ही क्या, मिलना और बिछुड़ना। तो जोग वियोग भोग फल मंदा, हित नहित मध्यम भ्रम फंदा। जोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, ये हितेशी हैं, ये अनहितेशी हैं, ये मध्यस्थ हैं, सब भ्रम के फंदे हैं। फिर संसार में कहो कि राज छूट गया तो धरणी धाम माने निवास आवास, धरणी धाम धन को पूरा परिवारु, स्वर्ग नरक जहां लगी व्यवहारु। ओ देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। स्वर्ग है, नरक है, धरणी धाम पूर परिवार, स्वर्ग और नरक, इनके विषय में देखना, इनके विषय में सुनना, इनके विषय में गुनना विचार करना मोह का मूल है। परमार्थ कभी नहीं, परमार्थ कदापि नहीं। मोह समस्त भव रोग का मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहु शूला। अनंत शूलों की सृष्टि होती है मोह से। सारे भव रोग का मूल मोह, और मोह का भी मूल है नरक और स्वर्ग के विषय में सोचना। लोग कहते हैं स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। लक्ष्मण कहते हैं नरक एक और स्वर्ग, इसके विषय में सोचना, सुनना और मन में विचार करना समय नष्ट करना है। ये मोह अज्ञान का भी मूल है, परमार्थ कदापि नहीं। तो भला परमार्थ है किसमें? तो सखा परम परमार्थ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। मन क्रम वचन से राम एक परम प्रभु के चरण कमलों में प्रीति। कदाचित वहां प्रीति नहीं है चरणों में, और फिर कोई कहता मैं धार्मिक हूँ, सुखी हूँ। तो शो सुख कर्म धर्म जरी जाओ, जान राम पद पंकज भाओ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां न राम प्रेम पर धनु। वो सुख और वो कर्म और उस धर्माचरण में आग लग जाए, जहां न राम पद पंकज भाव, जहां राम एक परम प्रभु के चरणों में भाव न हो, यदि ऐसा नहीं है तो जोग कुजोग है। सैन बोर्ड भर जोग का लगा है कुजोग, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, ज्ञान अज्ञान है, धर्म अधर्म है और कर्म आपका कुकर्म है। तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिशो पिनर पशु बिनु पूछ बिखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना कोई कल्याण चाहता है? बगैर सिंह पूछ का पशु है, बैल में उसमें कोई अंतर नहीं, खाली सिंह नहीं है, पूछ नहीं है, बाकी पूरा पक्का बैल। भला इससे ज्यादा कोई कितनी कड़वी बात महापुरुष ताड़ना कितनी देते। लेकिन मत मतांतर पीछा कर रहा हमारा, इस पर इन महापुरुष का निर्णय है। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, विविध कर्म अधर्म है, बहुत से मत मतांतर अधर्म है। शोक प्रद सब त्याग हो, तुम्हें शोक प्रदान करने वाले ये जब फल देंगे तो शोक ही देंगे, आफत में डालेंगे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, विविध कर्म और बहुत से मत मतांतर अधर्म ये तुम्हें शोक प्रदान करने वाले हैं, तो शोक प्रद सब त्याग हो तो करें क्या। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। पूर्ण विश्वास करके दास तुलसी कहते हैं, राम उन परम प्रभु के चरणों के अनुरागी हो जाओ। अनंत काल से भजन किसका किया, पूर्व मनुष्यों ने किसका किया? तो शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, सब कर्मत खग नायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। आदि गुरु शिव, विधाता सनत सनातन सनंदन और कुमार सप्तऋषि सुख सनक नारद, अनंत काल से जो महापुरुष होते आए, सबका सिद्धांत एक, करिय राम पद पंकज नेहा। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी, तरहिन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। साधक सिद्ध विमुक्त उदासीन, मेरे स्वामी राम का स्मरण किए बिना कोई तर ही नहीं सकता, ऐसे राम को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। हम तीर्थ व्रत करते हैं, ये धर्म है। भगवान का प्रेम सीधा जाके नहीं पकड़ लोगे, उसका रास्ता है। तो तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना, भूत दया प्राणियों पर दया, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहां लगी साधन वेद बखानी। ये साधन है, वेदों में वर्णित साधन है, हमें करना है। जहां लगी साधन वेद बखानी, और सब कर फल हरि भक्ति भवानी, सबका फल है हरि की भक्ति। प्रभु कृपा करते हैं, प्रभु का एक नाम हरि, अनंत नामों में से एक नाम हरि, जिस पर अनुग्रह करते हैं, सुबह सुबह हर लेते हैं और बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। एक भजन एक इष्ट का, चार चौपाई रामचरित मानस में है कि धर्म की, जिसमें परिभाषा दी है, धर्म सत्य के समान नहीं और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म न दूसरे सत्य समाना। एक परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दो और परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, तीन और एक कहीं धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, और चारों चौपाई का अर्थ एक। तो धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। भला सत्य ही क्या है? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। व्यापक है, कण कण में एक है भगवान, एक से सवा कभी नहीं हुआ, डेढ़ कभी नहीं हुआ, दो असंभव। व्यापक एक विरहद है इसलिए ब्रह्म कहलाता है, उसका कभी विनाश नहीं होता इसलिए अविनाशी है। तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, ओ सत्य चेतन घन आनंद राशि। वो सत्य है, परम चेतन है। हम संकल्प बाद में करते हो, पहले जानते हैं कि क्या करने जा रहे हो, उनसे कुछ नहीं छिपाया जा सकता। सत्य चेतन घन आनंद राशि, असीम आनंद की राशि है। भलाई प्रभु रहते कहाँ है, कभी किसी पूर्वजों को मिला तो कहाँ पर मिले हो, कहाँ भेंट हुई उनसे, तो हृदय में। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा प्रभु सबके हृदय में निवास करता है, अक्षत उन्हें क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। अविकारी, आप कुकुर गधा घोड़ा कुछ भी खाओ कुछ भी पहनो, विकारों से निर्लेप दृष्टा के रूप में है। लाइट जल रही है, चाहे तास खेलो चाहे भागवत पढ़ो, उसका नाम है प्रकाश देना, तटस्थ। लेकिन अनन्य भक्ति से जो पकड़ लेता है तो भगवान वो अपना हाथ फैला देते। शोक केवल भक्ति नित लागे, अक्षत अभिकारी, विकारों से लिपाए मन नहीं, निवास से हृदय होंगे हृदय में, हमें कैसे प्राप्त हो, हमारे किस काम के। तो नाम निरूपण एक ही विधि है, नाम निरूपण नाम यतन ते, शो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। नाम एक उलझा हुआ प्रश्न है, खेत की निराई करते हो और डोरा की लच्छा कभी उलझ जाता तो अलग करके सुलझाना पड़ता है ना। नाम एक उलझा हुआ प्रश्न, इस गुत्थी को सुलझाओ, नाम का निरूपण करो, निराकरण करो कि नाम है किस प्रकार। पहले निरूपण करो और जब समझ काम कर जाए, यत्न करो अर्थात अभ्यास करो, वो प्रकट हो जाएंगे। जैसे रत्न की पहचान हो जाने पर कीमत झलकने लगती है, ऐसे ही तुरंत प्रत्यक्ष हो जाएंगे। साधना की, ईश्वर दर्शन की साधना की शुरुआत नाम से है और परिचय देख के ही नाम शांत होता, बीच में कोई विराम नहीं, ये प्रश्न अलग। दूसरे शब्दों में सत्य एक भगवान व्याप्त ब्रह्म, सत्य चेतन घन आनंद राशि, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। अगले पर इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये सब तो प्रकृति है, आत्मा प्रकृति से परे है इसलिए पर कहलाती है। परहित तो इस आत्मा के हित के समान कोई धर्म नहीं है, और आत्मा को अधोगति में ले जाने के समान कोई पीड़ा नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आत्मा ही शत्रु और आत्मा ही मित्र है। जिन पुरुषों द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती गई है उसके लिए उसी की आत्मा मित्र बनकर मित्रता बरतती है, परम कल्याण करने वाली होती है। और जिनके द्वारा नहीं जीती गई उनके लिए उन्हीं की आत्मा शत्रु है, शत्रुता बरतती है, अधोगति नीच योनियों में फेंकने वाली होती है। अब अर्जुन पुरुष को चाहिए कि अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे। आत्मा पर है, प्रकृति पार प्रभु सबोरवासी पर है, पराया है, इसका हित इसके समान कोई धर्म नहीं। एक तो साधक स्वयं अभ्यास करके अपना हित करता है, दूसरा महापुरुष होते हैं और सबको उस आत्मिक पथ पर जागृत करके लगा देते हैं। महाराज के असली परोपकारी तो मैं हूं और तो सब कहे भरे के हैं क्योंकि जागृति महापुरुष से सदगुरु से पोथा पढ़ने से भी नहीं आएगी। तीसरे शब्द उसी को प्रस्तुत किया, परम धर्म श्रुति भी दिते अहिंसा, पर निंदा सम्यग्न गरिसा। परम धर्म जिससे बड़ा कोई धर्म नहीं, श्रुति भी दिते अहिंसा। श्रुति एक तो नाम है वेद का, श्रुति है, और वेद भी अपौरुष ही है उसके अनुसार चलो। दूसरी सूरत है मन की दृष्टि का नाम सूरत है, ये दृश्य सूरत भटक रही है। मन वायु से तेज चलने वाला, उसी वेग के साथ मन की दृष्टि सन 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 डोलती रहती ना। ये सही नाम रूप लीला धाम साधना के, सही साधना के दौर में पड़कर शाने शने सूरत स्थिर हो जाए, सूरत विदित हो जाए। ने भला उद्वेग उठे ने बुरा, इतनी सूक्ष्म हो गई सूरत कि श्वास बास की तरह खड़ी हो गई, तेल धारावत वृति श्वास में प्रवाहित हो गई, श्वास आई तो रा गई तो मैं ओम ओम, और इस दो शब्दों के बीच में तीसरा कोई उद्वेग ने उत्पन्न हो, किसी प्रकार का विकल्प ने प्रकट हो, उस टाइम सूरत विदित है, स्थिर है। जहां सूरत श्वास में स्थायित्व लिया सूरत ने, सूरत जिस पल विदित हुई दूसरे पल उसकी आड़ में छिपी वस्तु है, उसी का नाम है भगवान। साधना यही तक है। जे रामेश्वर दर्शन करहीं बिनु प्रयास भव सागर तरहीं, जे गंगा जल आनि चढ़ाईहीं ते सायुज मुक्ति नर पहीं। भगवान राम ने कहा जो रामेश्वर दर्शन करहीं, सारी साधना पूरी छोड़ दो, फिर कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, वो भव सागर तर जाएगा। और रोज ट्रेनों की ट्रेनें जा रही रामेश्वर, कोई तरता हुआ दिखाई नहीं देता। एक महात्मा कांवर लेके आए चित्रकूट अनसुईया में गुरु महाराज के सामने, कांवर वहां रखा और आके किया प्रणाम। तो महाराज ने पूछा क्यों, परसाल भी आए थे? बोले हाँ गुरु महाराज, हाँ महाराज जी, हम परसाल आए, तिरसा आए, उससे पहले आए 10 बार गंगोत्री से जल लेकर वो रामेश्वरम में जाके भोलेनाथ का अभिषेक किया है, 11वीं बार लेके जा रहा हूं, वो कांवर रखी। तो महाराज के भटके रहो तो धूर्त गमार कहीं का कपड़ा रंग लिया ने जाने न बूझे। तो बाबा बहुत घबराए, वो सन्यासी महात्मा थे। बोले अच्छा महाराज, क्या हम गलत कर रहे हैं? बोले गलत नहीं तो क्या, एक बार गया वो तो दर्शन साथ ही भवसागर पार हो गया, तो 3 बार गया, 11 बार गया, तब वो पार का ही नहीं हुआ। अरे बेटा ये गोपनीय है मानस, दो गोपनीय एक शास्त्र है, ये चरित्र जाने मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। स्वर कहते हैं श्वास को, श्वास पर श्वास का यजन करते हुए श्वास आई ओम गई ओम, स्वर की गति स्थायित्व ले ले। ने फिर शिवाय नाम के श्वास में जब भजन नाम ढल जाता है तो श्वास शिवाय नाम के और कुछ कहती नहीं, फिर जपने की आवश्यकता नहीं, केवल बाजू में मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, देखा भर करे कि कब श्वास आई क्या कहा, कब लौट के गई क्या कहा, इसको देखा भर करे। मन की दृष्टि का नाम है सूर्य, तो सूरत यहां स्थिर हो जाए, श्वास आई तो गई तो, तेल धारावत सूरत खड़ी हो जाए। मन की वृत्ति तो उतना वेग है जैसे वायु, वो शांत हो जाए, इतने में प्रवाहित हो जाए। ये स्वर जहां विदित हुआ, इस श्वास के श्वास में सूरत जहां स्थायित्व लिया प्रवाहित हुई, ये मन की निरोधावस्था है। अरे संकल्प का नाम मन है, जब दूसरा संकल्प उठता ही नहीं तो निरोधी अवस्था। इस निरोध के साथ ही स्वर के साक्षात निरोध के साथ ही जो आड़ में छिपी वस्तु है, शेष बसता है, वो है राम। जो उसका दर्शन कर लेगा, प्रयास खत्म, साधना पूर्ण हुई, योगाभ्यास पूर्ण हुआ, भवसागर तर जाएगा। लेकिन दर्शन के साथ भगवान देखने में आएंगे और हम कुछ जानेंगे, वो हमारे जानने में आएगा, हमें उसका ज्ञान होगा। तो ज्ञान ही गंगा है परम पवित्र करने वाली। अलग थे तो हमने जानना और वो जानने में आए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, उन्हें जानकर उसी में समाहित हो गया। तो कौन जानकारी रखे वहां है कौन, और किसकी रखे बचा कौन शेष? तो जे गंगा जल आनी चढ़ाई ते सायुज मुक्ति नर पही। वो जो स्वर निरोध के साथ जो अनुभूति मिली, मन के निरोध और विलय काल में जो अनुभूति मिली, ज्ञान जानकारी मिली, वो भी उस स्वरूप में चढ़ गई, तो सायुज मुक्ति। तो ज्ञानम ने ध्यानम जोगम ने जपम चिदानंद रूप है शिव है केवलो हम। माने ज्ञान है ने ध्यान है जोग है ने जप है, चित परमानंद स्वरूप में है, केवल स्वरूप कल्याण तत्व शिव मात्र शेष हूं। ये है प्राप्ति। तो सूरत विदित हो जाए, जहां विदित हो गई तो आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले सर संकल्प शांत हो गए, मन की निरोधावस्था है। जिस क्षण विदित हुई उसी क्षण उसकी आड़ में ही प्रभु शेष बसते हैं या उनकी जानकारी मिली। तो अहिंसा, फिर आत्मा अधोगति में कभी नहीं आएगी, सारी साधना इसमें छिपी हुई है। कबीर ने निर्णय दिया कि जागरी मोरी सुरत सुहागिनी, का सोवत है मोह निशा में, तूठ के भजनिया में लागरी मोरी सुरत सुहागिन। सुहागिन सूरत तब है, सूरत हम भजन हम न करें, हम न लगावे, हम बलुक भाग जाए। भगवान कान पकड़ के लाके बैठा दे, कर भजन ऐसे कर जब भगवान के वरद हस्त के नीचे रहती है सूरत, तो सुहागिन है वो, सदा वरद हस्त के नीचे है। साधक तो एक नाथा हुआ बैल है, उसे जो पार लग जाता है उस रथी प्रेरक की देन है, सदगुरु की देन है। जब ये भगवान के प्रेरणा के आधार पर सूरत जब चलने लगती है वो सुहागिन है। सूरत एक नारी संज्ञा है। तो जागरी मोरी सूरत सुहागिन, बोले सोया क्या, सूरत का सोना क्या, तो कहा सोवत है मोह निशा में, क्या मोह के रूपी अंधकार में सोई हुई है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, का सोवत है मोह निशा में, तो उठ जागो, उठ के भजनिया में लागरी मोरी सुरत सुहागिन। उठ, तू उठे कैसे भजन में लग, अब तू सुहागिन है, प्रभु के वरद हस्त के नीचे है, तो अब भूल न होने पाए, अब सो मत जा। भजन में लगोगे तो भज माने भाग, भजने मतलब भागो मत। आप बैठे हो तब भी भाग रहे हो, कभी कभी रात को मन सोया रहता तब भी भागता रहता, नींद नहीं आई तो क्या हो गया नींद को, वो मन चिक 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 शुरू कर दिया और क्या। आदमी वहीं रहता है जहां उसका मन रहता है, इसलिए सूरत दौड़ती रहती है। चित्त दे शब्द सुनो श्वासन लगी, श्वास में सूरत को लगाओ, चित्त को लगाओ और शब्द सुनो। श्वास आई तो क्या कहा, गई तो क्या कहा, तो उठत मधुर धुन रागरी मोरी सुरत सुहागिन। जब श्वास एक बार भजन जागृत हो गया तो रिनक धिनक धुनी अपने से उठे, उठत मधुर धुन रागरी। माधुर्य केवल परमात्मा में, सृष्टि में तो कटता है, विषय रूपी विष भरा है, वहां माधुर्य कहां, आज तक किसी को चैन मिला क्या। जो ईश्वरीय माधुर्य लेके जो धुन उठती है वही राग, श्वास आई ओम गई ओम, तो उठर उठत मधुर धुन रागरी मोरी सुरत सुहागिन। भगवान से अवश्य मांगो, सर्वांगीन समर्पण कर दो चरणों में, तो शीश चरण धई ओ विनती करी हो, चरणों में शीश को अर्पण कर दो। शीश अर्पण करने का अर्थ होता है कि हमने शीश काट के भेंट कर दिया, भगवान जो कहते हैं वही उतना ही लो, अपनी खोपड़ी से कुछ सोचो मत। जब भगवान के इशारे पर चलने की क्षमता आ गई, अपनी बुद्धि की उधेड़बुन खत्म हो गई, आपने शीश अर्पण कर दिया। शीश का काम है सोचना विचारना, तो शीश तो चरणों में डाल दो, शीश चरण दे विनती करी हो, तो विनय में क्या मांगा जाए, तो भक्ति विमल वर मांगरी मोरी सुरत सुहागिन। विभक्ति माने विभाजन, अलगो जी, भक्ति माने मिलना, प्रभु मैं आपका दर्शन स्पर्श आप में समाहित हो जाऊं, ये निर्मल बनो वर मांग, इससे निर्मल और कुछ नहीं। और भजन की चाल कैसी होनी चाहिए, कहे तो कबीर सुनो भाई संतों, संतों ध्यान दो इस बात पर, जगत पीठ दे भागरी मोरी सुरत सुहागन। जगत की ओर पीठ कर दो, तो अब जगत की ओर हम देख ही नहीं, पीठ में आंखें तो है नहीं, कौन देखेगा। पीठ करके खड़े मत रहो, फिर साधन पकड़ के भाग। जगत में सुमिरन करे सुवत में लोलाए, आठ पहर लागा रहे हार टूट ना जाए। भाग, अहर निष्पूरा समय लगा दो चिंतन में। जो जगत की ओर पीठ ही कर दिया, साला दो रोटी खा के पड़ा क्या है। तो जगत पीठ दे भागरी मोरी सुरत सुहागिन। जहां सुरति स्थायित्व लिया तो क्या मिल गया, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। परम धर्म जिससे बड़ा कोई धर्म नहीं, सुरत विदित हो जाए, ये मन की निरोधावस्था है। इस निरोध के साथ ही आड़ में छिपी सत्ता हुई है, परम तत्व है, परमात्मा है, वृहद ब्रह्म है। आप में दृष्टि बनकर खड़े हो जाएंगे सामने स्वयं, नहीं समझोगे तो समझा लेंगे, क्यों वहां और कुछ पीछे वाला वातावरण बचा ही नहीं। ये तब समझ में आती है। महाराज का कहना था, भगवान तुम्हें साधु कहें, तुम साधु हो। दुनिया कहे चाहे कब्बो ने कहे, तुम सब कुछ पा जाओगे। दुनिया फूल बरसावे भगवान के अवतार के, विश्व गुरु के, विश्व का भगोड़ा के, बेटा रोने को आंसू नहीं मिलेंगे। ये सर्टिफिकेट भगवान खुद देते हैं। और अपने अपनी दिशी साधु सूची को भा, अपने देखने से कौन हुआ। परम धर्म है श्रुति विदित अहिंसा, श्रुति विदित हुई तो अहिंसा। अब इस आत्मा को अधोगति में कभी नहीं जाना है, सदा रहने वाला जीवन मिल गया अहिंसा, सदा रहने वाली शांति मिल गई अहिंसा, फिर उधेड़ बुन खत्म। इसलिए चौथी चौपाई में कहता है, पहला तो सत धर्म न दूसरे सत्य समाना, सत्य एक व्याप्त ब्रह्म। भगवान परहित सरिष धर्म नहीं, प्रकृति पर प्रभु सबुवासी, परे इसलिए पर कहलाता है, परमात्मा कहलाता है, उसको विदित करो, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। और वो तब मिलेगा जब ये वृत्ति शांत हो जाए और लक्ष्य विदित हो जाए। ये साधना आत्म के परहित वाली। अंत में कहते हैं, यदि दुर्लभ मानव तन मिला है तो बस धर्म केवल एक, तो एक ही धर्म एक व्रत ने मा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। संसार में एक ही धर्म है, एक ही व्रत, एक ही नियम है, काय वचन मन से पति के चरणों में प्रेम। स्त्रियां तो कर लेंगी, उनके पास पति, आप कहां जाओगे। आप धर्म ढूंढने अरब चले जाओ, अल्लाहु अकबर, जब यहां तो आपका धर्म इतना ही है। वस्त्र में शरीर एक वस्त्र है, ये स्त्री पुरुष नपुंसक, ये तो मानव तन के वस्त्र के विधाता की सृष्टि के आकार है। गीता के अनुसार इंद्रिय स्तर पर जीवित है पुरुष, तो क्षर पुरुष क्षरणशील परिवर्तनशील। मन सहित इंद्रियों का संयम हो गया तो अक्षर पुरुष, उसका विनाश नहीं होगा। दर्शन स्पर्श प्रवेश पा गया तो परम पुरुष। पहले जीवात्मा इंद्रिय स्तर पर जीवन है, मन सहित इंद्रिय संयम हो गई तो इस कुटस्थ पुरुष ईश्वरात्मा। दर्शन स्पर्श प्रवेश पा गया तो परमात्मा। उत्कर्ष होता रहता आत्मिक उत्कर्ष, शरीर तो एक वस्त्र, वृत्ति का आकार होता है, उतार चढ़ाव भला और बुरा बना देती, जैसी वृत्ति वैसे ही आप, यह प्रश्न अलग। भजन शरीर नहीं करता, शरीर तो एक साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन के लिए धाम, धाम माने आपका निवास स्थान, आपको एक घर मिला है। भजन इस मानव तन से ही होगा, इसी धाम में होगा, लेकिन जब भी आपसे पार लगेगा, माताओं से पार लगेगी, संतों से पार लगेगा, तो इष्ट उन्मुख लगन जागृत हो जाएगी, वो भजन कराएगी। लो रूपी लड़की इष्ट उन्मुखी प्रेममयी प्रवृत्ति नारी संज्ञा है, तो यदि लगन लगी गई तो एक ही धर्म है, काय वचन मन से पथ को रखने वाले एक परमात्मा, उनके चरणों में प्रीति। हनुमान सुग्रीव घबरा गया, बोले कहा हनुमान, इस ऋषिमुख पर्वत की तलहटी में दो सूरवीर दिखाई दे रहे हैं, धनुष बाण है, भैया बालिका मन मेला है, कहीं हमारी हत्या करने तो नहीं भेज दिया, पता लगाओ, इशारा कर देना मैं भाग जाऊंगा। अपने युग जमाने का रेशर था सुग्रीव, बाली ने बहुत दौड़ाया पाया कभी नहीं, तो बोले भाग जाऊंगा। पूर्वज बड़े बुजदिल और बड़े कायर थे आप लोगों के, फौज उसके पास अनुमान ऐसा बलशाली जिसका सेनापति जामवंत वैसे बुद्धिमान मंत्री ब्रह्मा के बराबर बुद्धि रखने वाला ब्रह्मा का पुत्री था, लेकिन महाराजा इतने सूरवीर की इशारा कर देना भाग जाऊंगा। वो चप्पल हाथ में ले लिया। हनुमान जी ने कहा निश्चिंत रहे राजन, मैं अभी देखता हूं। तुरंत विप्र का वेश बनाया और पोथी बगल में दबाई। हनुमान विद्वान तो थे, सूर्य से संस्कृत पढ़े रहे और तिलक फटाका लगा के पैतरा भांज के खड़े हो गए सामने। ओहो अलौकिक, ऐसी छवि हमने कभी नहीं देखा, आप मनुष्य हो ही नहीं सकते, कृपया बताएं परिचय दे आप कौन है। कि तुम तीन देव महु को नर नारायण की तुम दो, ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है अथवा नर और नारायण है, आप कौन है। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुजे अवतार, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। या आप चराचर जगत के स्वामी साक्षात परपर ब्रह्म परमात्मा है, जगत की उत्पत्ति के कारण भव से उद्धार करने वाले स्वयं प्रभु हैं, आप कौन। तो तीन देव कोई और, ओ जग कारण और भव से उद्धार तारण कोई और, लगे उल्टी सीधी परीक्षा लेने और भगवान लगे मन बहलाने। कुछ देर बाद हनुमान को पता चला कि जिसकी प्रतीक्षा में मैं इस पहाड़ी पर पड़ा हूं वो प्रभु आ गए। हनुमान चरणों में लौट गए, बोले प्रभु सेवक को बड़ा देर में पहचाना। बोले नहीं हनुमान, तुम इतनी मधुर संस्कृत बोल रहे थे, ऐसा बढ़िया उपदेश कर रहे थे, हम तो भूल ही गए थे, तुम्हारी विद्वता हम भूल गए। तो विद्वता के बल पर जो भगवान को देखना चाहते हैं वो भूल ही जाते हैं। भगवान भी देखें ससुरा बड़बड़ कर रहे थे, हमारी और तो ध्यान ही नहीं। तुम चिंता मत करो हनुमान, सुनु कपिजिए मन सिजनी ऊना, तैमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम बिल्कुल दिमाग में गर्मी मत लाना, तो मुझे लक्ष्मण से दूने प्यारे हो, तो जानी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीति सब सूला। हनुमान जी ने पति को अनुकूल समझा, हृदय हर्ष से दर्वित हो गया, सारा सूल दुख खत्म हो गया। क्या हनुमान स्त्री थे जो पति को अनुकूल समझा, बानर जातीय पुरुष थे, राजकुमार थे, अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, और पति पत्नी वाला सब्जेक्ट तो वो सदा के लिए विस्मृत था। वहां पर भगवान के जो सहस्रों नामों में से एक नाम पति, मेरी पत राखो गिरधारी मीरा ने कहा मेरी पत को रख दे, पत मेरी मर्यादा, पत माने इज्जत, आज आपकी इज्जत यहां चली गई, किसी ने दो खरी खोटी सुना दिया। बोले स्कल का लौंडा होके इतना बोल दिया बुजुर्ग के सामने तो इज्जत चली गई, और दो झापड़ मार दिया उसे के चला गया तो इज्जत दुगनी हो गई, ये बुजुर्गों का मान है। शादी विवाह में रोजे इज्जत आया जाया करती है, नहीं मोटरसाइकिल देने कहा नहीं दे पाया बेचारा, कोशिश करके भी नहीं दे पाया। वरात बहुत खुश, सेवा बहुत अच्छी हुई, प्रश्न लगे समधि साहब की गर्दन लटक गई, उनके ससुरी इज्जत चली गई कहीं। पता नहीं कहां गई हमको नहीं मालूम, और कहीं मारुति पकड़ा दिया, सीना तन गया, इज्जत हो गई चौगनी। तुरंत धोती का छोर पकड़ के बोले आओ आओ ये बचवा को मिली है, लो पान खा लो। इज्जत चौगनी सड़ी छूट गया थी, यहां की इज्जत यहां रह चली गई। फिर सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई, यहां तो इज्जत आती जाती लेकिन विशुद्ध इज्जत, ये आत्मा परमात्मा का विशुद्ध अंश, उन्हीं का उतना ही पवित्र जितना भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा विशुद्ध होते हुए भी बार बार गर्भवास की यातनाएं, मलमूत्र से पीप से सनिधि योनियों का चक्कर भ्रमण इस दयनीय दशा से उबार करके आपको वास्तविक सहज स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दे, ये क्षमता है तो केवल भगवान में। मर्यादित स्वरूप देने की क्षमता केवल प्रभु में। उद्धार कोई नहीं कर सकता, देवता नहीं कर सकते। हम देवता परम दुख पायो, परम दुख तो ये झेल रहे, आपको सुख कहां से दे देंगे। इसलिए केवल उद्धार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार जग कारण भव तारण, भव से तारने की क्षमता केवल परमात्मा। क्यों को तरे हुए, देवता तो जोनी भोग के मर जाते हैं, ब्रह्मा भी काल आयु के दिन पूरा करके लोक समेत ठंडा हो जाता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुने, पुनरावर्ती स्वभावले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी मरने जन्मने वाली श्रृंखला के अंतर्गत है। इसलिए भगवान ही पद को रखने वाले हैं, फिर सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति स्वरूपस्थ कर देते हैं। इसलिए प्रभु का एक नाम पति। तुलसीदास जी ने अंत में स्तुति किया कि यह अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। रामायण की अंतिम दोहा में मिलेगा चौपाइयों में, यह अभिमान मेरा भूल के बिना जाए कि मैं सेवक और प्रभु मेरे पति। क्यों तुलसीदास स्थिर है क्या परमात्मा के। हरि हरि ओम प्रभु विभु, ऐसे उन नामों में से एक नाम पति, पत रखने वाला मालिक। वो चराचर के मालिक है इसलिए पति है, और कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए तो कहते हैं लखपति, फिर थोड़ा ढेर हो गया तो बोले करोड़पति, निधिपति। एक शब्द है पत माने मर्यादा, जो जितने दायरे का मालिक हो। और साहब हो गए हरियाणा पति, और हम लड़के हो गए स्कूल में पढ़ता अच्छा तो पढ़ाई पर अनुशासन पा गया, अधिकार क्षेत्र में जो हो। माता मीरा का पति मर गया, भोजराज राणा, रानी है पहले तो रोई अपने बिटवा के लिए उसकी माँ, फिर खड़ी हो गई फुफकार के, बोले लड़का गया तो गया, भला रानी वास की शान लौट आई, अब ये चुड़ैल मीरा जल जाए तो हम लोगों की आन बान फिर आ जाए। देखो ने महारानी होते भी नौलखे हार फेंक के, तुलसी की माला पहन के, अपने स्तर में न रह कर और चमरोटी में चली जा रही, कीर्तन करने कभी गरीबों में चली जा रही है। ये रनिवास की शोभा शान नष्ट कर दिया इसने। बहुत चिड़ी हुई थी एक उसकी ननद और एक उसकी सास जी, सब रानियां मिलके गई, चलिए महारानी साहब। बोले कहाँ, बोले सती होने जेवर पहनिए सिंगार करिए। बोले किस लिए, बोले आपका पति मर गए भोजराज। बोले पागल हो गई हो, ऐसे पति को क्यों भरूं जो जन्मे मर जाए, मीरा अविनाशी वर्यो सुहाग अमर हुई जाए। ऐसे पति का मैंने कब वर्ण किया था, भला मैं क्यों भरने जाऊं जो जन्मे और मर जाए। मांग सिंदूर की रस्म भी आयु पर्यंत निर्वाह न कर सके, पहले ही चला जाए। मीरा ने अविनाशी का वर्ण किया है, मेरा सुहाग अक्षुण्य है सदा अमर है, औरों के पिया परदेश बसत है लिख लिख बेजत पाती, और हमरे पिया मोरे ये बसत है नहीं क्यों जाति ने आती। राणो जी मैं तो गिरधर रंगवा रहती, मैं तो गिरधर के रंग में रंग हमने ब्याई कब किया था। भगवान का एक नाम पति, वो पत रखने वाले। आप सबको अपने मर्यादित से स्वरूप की स्थिति देने की वाले हैं तो केवल प्रभु। तो एक ही धर्म, आप सबका एक ही धर्म है, एक ही व्रत। कोई प्रतिज्ञाबद्ध होके लगना है व्रत लेना है तो एक ही व्रत, और किसी नियम का नियमित निर्वाह करना है तो एक ही नियम, एक ही धर्म। एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन से पत रखने वाले उन परमात्मा प्रभु के चरण, परम प्रभु के चरणों में प्रीति, और कहीं कुछ नहीं। इतना ही धर्म है, यदि नहीं है तो सो सुख कर्म धर्म जर जाओ, फेंक दो चूल्हे में, जहान राम पद पंकज भाव। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की।